તારીખ 14/7/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 67.
પકડાતો નથી એનું કારણ કે સ્વ પણ ઉભી જાય છે, પોતા પણ ઉભી જાય છે, રાગમાં અથવા શરીરમાં અથવા કોઈ રાગના વિષયમાં પોતા પણ ભાસે છે. એ જે ભાસે છે એટલે લાગે છે, એટલે અહીંયા જે જ્ઞાન વેદન છે એ પકડાતું નથી. પણ જો જ્ઞાન વેદન પકડાય તો એ જ્ઞાન વેદન, જ્ઞાનથી જ્ઞાનનું વેદન હોવાથી એમાં પરોક્ષતા છે જ નહીં, એટલે પ્રત્યક્ષતાનો પત્તો ત્યાંથી લાગી જાય છે. જેવું પ્રત્યક્ષતા પકડાય એટલે પુરુષાર્થનો ઉછાળો જે થવો જોઈએ એવું ખાઈ જાય છે, પુરુષાર્થ ઉછાળો થાય છે. જ્યાં સુધી પુરુષાર્થ ઉછળે નહીં ત્યાં સુધી અનુભવ ન થાય. તબિયત સન્મુખતામાં શું છે, પુરુષાર્થ મંદ છે ત્યાં સુધી હજી મુમુક્ષુ પણ સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ રહે છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી થતો. સમય દ્રષ્ટિ ક્યારે થાય કે કોઈ અપૂર્વ પુરુષાર્થ એકદમ તીવ્ર થઈ જાય ત્યારે, એ પણ આધારે થાય કે પ્રત્યક્ષતા ત્યારે. હું પ્રત્યક્ષ છું ને પણ એટલું બધો અનંત પ્રત્યક્ષ છે સ્વરૂપ કે પુરુષાર્થ સળ થતા વિના લે જ નહીં. જેમ કોઈ આ જન્મ દરિદ્રી અઢળક પલક ફરે અને એકદમ એનું ભવન ફરી જાય એવું છે. આમ અનંત પ્રત્યક્ષતા છે એ પુરુષાર્થને ઉછાળે છે, એ એનું ઘણું કારણ છે. એટલે એ પરોક્ષતામાં નથી રહી શકતું, એ જ્ઞાન પરોક્ષ ભાવે રહી શકતું નથી. પ્રત્યક્ષતા એવી છે એનો વિષય સ્વયંની પ્રત્યક્ષતા હોવાથી, અને તો પોતે છે એટલે જે એને જોનાર છે એ પરોક્ષ નથી રહી શકતો. કેમ કે એના વેદન છે પાછું, અને વેદન તો પરોક્ષ હોય નહીં. એ વેદનમાં જે બાકીનો જે બહિરંશ છે, જ્ઞાન વિશેષનો અંશ જે પરોક્ષતામાં રહ્યો છે એ આ બાજુ વળી જાય છે. આ બાજુ વળેલો છે, આ બાજુ વળી જાય છે. આ બાજુ જે વળેલો છે ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનું માધ્યમ છે, છેલ્લે તો મનનું માધ્યમ છે. બીજી ઇન્દ્રિયોનો ત્યાં વ્યાપાર નથી, મન સિવાયનો. એના ઉપર છે સ્વરૂપ સુધી પહોંચાય છે, માધ્યમ એ છે સામાન્ય જ્ઞાન. કેમ કે એ પ્રગટ છે, સામાન્ય જ્ઞાન ઓ પ્રગટ વેદન છે. જો શક્તિરૂપ જો પ્રત્યક્ષતા આનંદ પ્રત્યક્ષતા હે વો સામર્થ્ય રૂપ હૈ, તો સામર્થ્ય મેં આનંદ પ્રત્યક્ષતા કહાં સે ભાષ્યમાન હોવે કે પ્રત્યક્ષ અંશ પર સે ભાષ્યમાન હોવે. વરના તો પ્રત્યક્ષતા મેને ક્યાં આવી સમજ નહીં આયેગા, કલ્પના કરવી પડેગી. પણ કલ્પના સ્વયં પરોક્ષ જ્ઞાનમાં હોતી હૈ, મનાસુ જ્ઞાનમાં હોતી હૈ. ઇસલિયે પ્રત્યક્ષ અંશ સે પ્રત્યક્ષ સ્વભાવ કો પ્રતીતિ મેં લિયા જાતા હૈ, જ્ઞાન મેં લિયા જાતા હૈ. યે ઇનકા સાધન ભી એસા હૈ, સાધ્ય ભી એસા હી હૈ. એનું કારણ એ છે કે જો વિશેષ જ્ઞાન હૈ ઉસમે જો બાહ્ય દિશા કા જો ખિંચાવ હૈ વો ઉનકો તિરોભૂત કર દેતા હૈ. પર પદાર્થ મેં ક્યા હૈ ખિંચાવ, ખિંચાવ ઉસકો તો પંદરા ગાથા મેં લોલુપતા શબ્દ લિયા હૈ. લોલુપતા સે સમજ મેં આતા હૈ કે ખિંચાવ ક્યા ચીજ હૈ. ઓ જો ખેંચાણ હૈ તો ખિંચાવ કે હિસાબ છે સારા જો ધર્મ હૈ तो पूरा पर्याय दृष्टि से आखा आत्मा ये पंच में पकड़ में रहता है, तो वो जो वेदन है वो समझ में नहीं आता है। तो वेदन क्या चीज है वही समझ में नहीं आता, वास्तविक रूप से। तो इसलिए जो कहते हैं कि बाहर के बाहर में उदासीन हो, मूठ शुद्धि बाहर में उदासीन अगर हो तो भीतर की चीज को समझने की उसको क्षमता एबिलिटी जिसको कहते हैं वो आता है, वरना उनको क्षमता नहीं है। अंदर में वेदन क्या चीज है, कैसे ग्रहण करे, वो बात उनको नहीं मिलती। तो जिज्ञासा उसमें आनी चाहिए। जैसे मेरा स्वरूप ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करते हैं, अनंत चैतन्य ज्योति कहते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बॉम्बास्टिक शब्द का प्रयोग किया है, तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता है मैं कैसा, ऐसा मगर कैसा मैं, तो अगर तीव्र जिज्ञासा आ जाए तो भी दूसरी जगह से हट जाएगा। जैसे एक कीमती चीज खो जाती है तो खाना नींद स्नाना सब खत्म हो जाता है। एक 5-10 लाख का हीरा हाथ से गिर गया और खाने के टाइम पे गिर गया या सोने के टाइम पे गिर गया, कोई खाएगा? तो वो पहले खाना खा लो बाद में उसको ढूंढेंगे, ये नहीं बनेगा। तो पहले जो गिर गया है उसको ढूंढ लो, एक घंटा भर नहीं मिले, 1.5 घंटा भर नहीं मिले, 2 घंटा भर मिले तो कोई बात नहीं, पहले ढूंढना पड़ेगा। तो इतना मूल्य जिसका है, 5-10 लाख का मूल्य है, उसमें भी खाना पीना बंद हो जाता है या रुचि नहीं रहती है, उसमें रुचि नहीं रहती है, तो ये ऐसा मूल्यांकन हो जाता है समझ में। खाली जो समझ है कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत उसका वैल्यू है, बहुत महिमा है, तो उसमें उतनी जिज्ञासा हो जाती है। तो जिज्ञासा का मारा कितने अंतर जिज्ञासा में वो ढूंढने को रहता है कि कहीं भी उनको रस नहीं आता है, तो वही उसमें उदासीनता है। रस नहीं आवे वही उदासीन है, कीमत मैंने विचार से तो बराबर भाषी है कि कैसे मूल्यांकन आता है, कीमत आती है कि अगर एक दफे भी इसका दर्शन हो जाए तो अनंत जन्म मरण खत्म होता है प्रथम दर्शन में ही, जिसका काल क्षणार्थ है, पूरी क्षण भी नहीं है, क्षण का एक पार्ट एंड पार्शल ऑफ द सेकंड जिसको बोले। तो उतना एक दर्शन के काल में अनंत जन्म मरण को खत्म करने वाली चीज है, तो जिसमें अनंत जन्म मरण खत्म मतलब क्या कि किसी भी प्रकार का कोई संसार का दुख नहीं, जन्म का नहीं, मरण का नहीं, पीड़ा का नहीं, व्याधि का नहीं, टेंशन का नहीं, रोग का नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। तो ऐसे विचार से बात तो कोई समझ में आती है, तो समझ के यथार्थता माने क्या कि इसकी खोज चालू हो गई। वो अगर इसकी खोज चालू तीव्रता से नहीं हुई तो वो समझ यथार्थ नहीं है। वो समझ समझ में फर्क है, वो उतनी है कि सही समझ में उसकी खोज चालू हो जाती है, और खोज चालू हो जाती है तो रस निरस हो ही जाता है। अगर सही खोज चालू नहीं हुई और रस निरस नहीं हुआ तो वो समझ समझ नहीं है उसकी, वो गैर समझ है कुछ कहीं भी। तो इसलिए वो मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य उदासीनता तो उतना ही हो जाए तो भी उनका काम बराबर होता है। विशेष ज्ञान को गौण करे, ज्ञाकार ज्ञान को गौण करे, ज्ञानाकार ज्ञान को मुख्य होवे। तो मुख्यता कैसे आती है कि अपनापन होवे वहां भी मुख्यता आएगी, जहां तक अपनापन नहीं आता है वहां उतनी मुख्यता नहीं आती। तो वहां क्या होता है कि वहां स्वयं रूप से उसको देखने में आता है, स्वरूप निश्चय में मेरा ऐसा स्वरूप है ऐसा निश्चय होता
है,
विचार विकल्प रूप
हो जाता है, वापिस हो जाता है,
वापिस में नहीं
सामान्य ज्ञान में मुख्य करता ही प्रत्यक्ष से ख्याल मारा है, जेमां पोतापानो तात्मानो बुद्धिपूर्वक विचार करीने निकल कर
उसमें स्वपना भाष्यमान होता है, लगता है, जैसे ठंडी लगती है, विकल्प करना पड़ता है ठंडी लगाने के लिए, ठंडी लगती है, जैसे स्वपना लगता है उसका नाम भाषण है,
मुख्य
फिर तो मुख्यता ही रहती है, एक दफे उसका भाव भाषण हुआ तो मुख्यता छूटने वाली नहीं, मुख्यता चालू हो जाती है, फिर क्या है तो पुरुषार्थ की कमी बेसी है, तो पुरुषार्थ की कमी है वहां तक अनुभव नहीं होता है, तो पुरुषार्थ कैसे बढ़ता है, तो जो वेदन में जो प्रत्यक्षता है वो प्रत्यक्षता अनंत प्रत्यक्षता का जो विषय है अपना स्वरूप जो निश्चय में आया है उसका उससे जोड़ाता है, तो जोड़ाने में तो ऐसा है कि किसी को अंतर्भूत में काम हो गया तो किसी को कुछ दिन घंटा लगे दिनों लगे ऐसा भी हो सकता है, इसका थोड़ा अलग अलग चीज को अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कम समय लगे वो कोई इमटेरियल है, फिर प्रॉब्लम हाँ जो प्रॉब्लम विटमना है ना उसके पहले पहले
सामान्य
सामान्य नहीं, विशेष तो उधर उधर घूमता है, योग जो है वो सर्वस्थ जीव का संसारी जीव का तो इधर उधर रहता है, या तो पंचेंद्रियों से बाहर जाता है या तो मन से बाहर जाता है, सामने कोई विषय नहीं हो तो मन से बाहर चला जाएगा, एक सेकंड में अमेरिका आ जाता है इधर तो उसकी तो गति तेज बहुत है, सामान्य ज्ञान तो सामान्य रूप रहा करता है, बस वेदन रूप रहा करता है, रहा करता है, चालू रहता है, नहीं वेदन
रूप एक अन्य अन्य विषय
सामान्य का मुख्य स्वरूप वेदन रूप है, वेदन में जानना आ जाता है, जानने में वेदना नहीं आता है, फर्क वो फर्क है, कि जैसे हमने लड्डू को जाना तो लड्डू का वेदन नहीं हो सकता है, ठंडी को जाना ठंडी का वेदन नहीं, तो जानने में वेदन नहीं होता है क्योंकि परपदार्थ का वेदन कर ही नहीं कर सकता या ज्ञान, लेकिन जो ज्ञान में ज्ञान का वेदन है वो कैसा है वो तो जानने में आता ही नहीं, वेदन जैसा है वैसा तो उसका जानना होता ही नहीं, तो जानने के साथ वेदन वेदन के साथ जानना गौण रूप से रहता ही है, वरना तो वेदन कैसा है उसका पता ही नहीं चले, वहां जानना वेदन करना दोनों साथ है, सामान्य में तो वेदन और जानना दोनों साथ है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है,
वेदन करने जाने नहीं,
नहीं
स्वरूप में क्या जानकारी है, अन्य कभी जानकारी नहीं चाहिए,
खाली ज्ञान है
तो गुरुदेव किस भाषा से कहते थे कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वाली गाथा चलती सत्रार्थ का, तो देखिए वो न ऐसा चालू है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है ऐसा कहते हैं, ना सामान्य लेना है ना रूप से चालू है ऐसा कहते हैं, तो भाषा में उतना लाते थे, इतना भाषा गोचर नहीं है क्योंकि स्वाद का विषय ऐसा होता है, तो कभी दृष्टांत फिर ऐसा देता है जैसे कि भाई स्वाद का विषय कितना भाषा में आएगा, जैसे ककड़ी भी घी ककड़ी काजू सब फीका ही फीका है, अपने मोड़ा कहिए से तो कोई स्वाद नहीं है, तो अंतर तो है, ककड़ी में कोई स्वाद नहीं, घी में कोई स्वाद नहीं, बादाम काजू में कोई स्वाद नहीं। अब बताइए कि बादाम और काजू में कोई स्वाद तीखा नहीं, मीठा नहीं, खटपरा नहीं, खट्टा नहीं, फीका ही फीका है, फिर दोनों में अंतर क्या बताइए? कोई नहीं बता सकेगा। मिर्च और काली मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च, दोनों का स्वाद तो तीखा है, क्या अंतर है बता सकेंगे? वेदन तो वेदन से ही मालूम पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बताते तो ऐसे बताते थे, ऐसे नग्न 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 चलता ही है, सामान्य रूप से चलता ही है, उसमें वेदन है। भेद ज्ञान से, भेद ज्ञान से आगे बढ़ना, जैसे रचनामृत में तुझे बैठ से कहा, वो बताता है कि पहले ऊपर ऊपर से भेद ज्ञान होता है, फिर उन्नाम से भेद ज्ञान होता है, ऊपर ऊपर से मैंने क्या कि अपना हमारे जीवन में तो प्रसंग बनता है, कभी को दुख होता है, कभी सुख होता है, हर्ष और शोक दोनों प्रकार का परिणाम में रस तीव्र होता है, तो उस वक्त हमें अंतर में अवलोकन करना है कि जब हर्ष हुआ तो हमारे ज्ञान में क्या आया, हमारे आत्मे में आत्मा में क्या आया, ज्ञान में मैंने आत्मा में क्या आ गया, तो हम हर्षित हो गए। जब हम दुखी होते हैं, शोक होता है, तो हमारे ज्ञान में से क्या चला गया, ज्ञान में से कोई चला जाता है क्या? कुछ जाता नहीं, तो बस वही देखना है, वही देखना है, मतलब वहां जो अनुभव होता है उसको देखना है कि क्या आया क्या गया, अनुभव करते हैं ज्ञान का, तो वहां से वेद ज्ञान चालू होता है कि ज्ञान तो वैसा का वैसा ही रहता है। जितना अवलोकन से अपना परिणमन का अनुभव, उस अनुभव का जितना परिचय बढ़ता है, ये परिचय बढ़ने से स्वभाव मालूम पड़ता है। जैसे संसार में क्या होता है कि जब शादी होती है तो स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव क्या है किसी को पता नहीं है, पहले तो लड़की इनके बाप के माँ थे, तो लड़का इनके बाप के माँ था, तो साथ में तो रहे नहीं, जब वो साथ में जीवन जीने लगे और अनेक प्रसंग से जब परिचय हुआ तब पता लगा कि इनका स्वभाव ऐसा और इनका स्वभाव ऐसा, और बहुत से पहलू से ये बात बिना परिचय किसी का स्वभाव का पता चलता है क्या? ऐसे हमारे परिणाम में अनेक प्रकार के विभाव होते हैं, एक प्रकार का तो होता नहीं, तो उसका अनुभव देखते देखते विभाव स्वभाव क्या उसका पता चलता है, और हमारे ज्ञान में जो भी ज्ञान का अनुभव होता है उसका बार बार परिचय करने से ज्ञान में ज्ञान स्वभाव क्या उसका पता चलता है। ज्ञान स्वभाव है वो आत्म स्वभाव है, और जो विभाव के जो स्वभाव है तो इससे विरुद्ध स्वभाव है, इसलिए आत्म स्वभाव और विभाव स्वभाव दोनों का परिचय से पहचान होने के बाद पहचान वाले जीव को किसी भी विभाव उसने स्वभाव की भ्रांति नहीं हुई, यही कारण है। जैसे हीरा की पहचान जिसको है तो कहीं से भी हीरा ला के उसको दो, कैसा भी तेज वाला हीरा ला के दो, खोटा, लेकिन वो आई ग्लास लगा के बोलेगा हीरा नहीं, नापास है, मैं भी परीक्षा में नापास। बोलने वाले ये बोलेगा कि ये हीरा मैंने 10,000 में लिया, तो वो देख के कहेगा कि इसका 10 रुपया भी मुश्किल से मिल सकता है, 10,000 क्या 10 रुपया मिलेगा उसका, इतना लाइट चमक दिखती है तो वो आर्टिफिशियल है, तो हीरा है ही नहीं, पत्थर है, सामान्य पत्थर। एक पहचान का विषय होता है, जैसे कितना भी शुभ भाव हो लेकिन जिसको विभाव स्वभाव की पहचान है तो कोई भी देश बदल के विभाव आएगा वो पहचान नहीं जाते विभाव, पर स्वभाव विभाव दोनों परस्पर विरुद्ध होने से सापेक्ष है और दोनों परिणाम भी एक साथ जीव में होते हैं, ज्ञान और राग एक साथ होते हैं, दोनों का अनुभव होता है, दोनों का अवलोकन से परिचय बढ़ता है तो उसका स्वभाव की पहचान हो जाती है, स्वभाव की पहचान होने से फिर भ्रांति नहीं रहती, यही कारण। निर्मित है जैसे ये पुताना परिणाम दोनों होने हैं, निर्मणी मिलवणी होती रहेगी क्योंकि दोनों का अनुभव एक दूसरे से बहुत अलग है, विभाव और रागादि में आकुलता है और ज्ञान में शांति है, कषाय ज्ञान में नहीं है, राग में कषाय है, कषाय में अशांति है, आकुलता है, उसमें आकुलता नहीं है ज्ञान में, तो दोनों का स्वभाव दोनों का में जो शांति अशांति वाला पहलू है जितना विरुद्ध है तो जरा अवलोकन बारीक का शुरू हो जाएगा तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इतनी कितनी पहचान होगी, परिचय बिना किसी की पहचान होती ही नहीं, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई चीज हो, मैंने कपड़ा हो या अनाज हो चावल हो चाय हो कुछ भी हो, हर एक के व्यापारी तो उसकी पहचान रखता है, कहाँ से हुआ उसकी पहचान, कोई जन्म से तो पहचान करके आते नहीं, बार बार परिचय करके पहचान कर लेते हैं। सत्संग से कई प्रकार के जो असमाधान हैं वो छूट जाते हैं, एक तो वो बात होती है, तो जो समझ की जो भूल है, विचार की वैचारिक विपर्यास है वो छूटता है, अब बाकी रहा विपर्यास वेदन का, दो प्रकार का ज्ञान में विपर्यास होता है, एक तो समझ का और फिर या विचार का और एक तो वेदन का, तो सत्समाधान से वैचारिक विपर्यास में वो छूट सकता है, फिर जो वेदन का है उसके लिए पूरा अंतर प्रयत्न करना पड़ता है, और विशेष तो जो सत्पुरुष का जो प्रकरण अपने यहाँ चलता है उसमें ये विशिष्टता है कि प्रत्यक्षता का विषय सिर्फ शास्त्र से समझ में उतना नहीं आता, जितना प्रत्यक्ष जिसने आत्मा किया हो और प्रत्यक्ष अंश से जिसको प्रगट से वो बात कहने में आती है उसमें जो वो टोन आता है वो टान हो पेपर पर नहीं आ सकता है, तो यहाँ से थोड़ी और बात और ये प्रत्यक्षता वाला जो मुद्दा है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्यों कि सुबानी जी लिखते हैं अपने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में आता है कि द्रविंद जी ने सब कुछ जाना लेकिन आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं किया, क्या क्या क्षति रह गई, तो किस प्रकार की क्षति रह गई कि 11 अनुभवों में जानने में कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहती जो समझ में कोई विपर्यास हो जाए, हम तो बराबर है इनकी, लेकिन वो अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं करता, बस यही बातें रह गया है इसको, ऐसा लिखा है। ये मुद्दा जो है वो ग्रंथ से नहीं मिलता, हाँ ग्रंथ से किसको मिलता है, जिसको पूर्व संस्कार हो, जैसे गुरुदेव थे, गुरु जी थे, उनकी बात अलग है, वो तो नारके के गुरु को भी मिल जाते। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो हमसे भी ग्रंथ से मिल जाता, जैसे गुरुदेव से मिल गया, तो ये बात तो फाइनल हो गई कि हम लोग तो संस्कार लेके नहीं आए। बोले कि संस्कार लेके हम आए नहीं आए कैसे पता चले, कि पता चल जाता है। समय सारा भी बड़े बड़े ग्रंथ मिल गए, गुरुदेव को ग्रंथ मिला अनुभव कर लिया, उनको ग्रंथ मिला अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि संस्कार लेके नहीं आए। ये
इसमें प्रत्यक्ष इनकी बात का विशेष महत्व है।
एक नया स्टेज आता है ना, परोक्षता में आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अनुभवी पुरुषों के वचनामृत से बहुत कुछ समझना मिलता है, आत्मा के विषय में भी जितने खास खास इनकी विशेषताएं हैं वो सब समझ में आती है। लेकिन वो परोक्ष समझ में आती है, विचार ज्ञान में बात सब परोक्षता में रह जाती है, और वहां तक इसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो तो मालूम नहीं पड़ता। तो इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यक्षता का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। क्या जैसे अपने बात कोई प्रश्न चलाया कि आजकल आतंकवाद विश्व में इतना बड़ा है कि बड़े बड़े लोगों को तो घर से बाहर निकलना ही जान का जोखिम है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसकी तो वैल्यू बहुत है। अभी कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं कि वो पर्दा पर मीटिंग कर सकते हैं, पर्दा पर उसको बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एट अ टाइम, फिर भी रूबरू में क्यों मीटिंग करनी पड़ती है? क्योंकि आखिर में वो परोक्ष है। आप भले पर्दा पर आ जा, पर्दे से हम बात कर ले, आपकी आवाज आपका चेहरा कर ले, फिर भी आप मेरे प्रत्यक्ष में और पर्दा पर उसमें बड़ा अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्षता का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो ये तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, इसका ऑल्टरनेटिव कहां से लाओगे? इसका ऑल्टरनेटिव कोई है, इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं होता। बहुत बड़े रस में हम देखो, अभी इधर टीवी रखने में गुरुदेव की टेप चला दे रहे, तो खुद गुरुदेव खुद विराजमान हुए तो कितना फर्क पड़े अपने माइंड में। वे बैठे हैं, अपन सीधे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे नहीं जैसे चाहे ऐसे बैठ सकते हैं नहीं, उतनी उपस्थिति में फर्क पड़ जाता है। उसका एक दृष्टांत और भी दिया था, एक मुर्दा है वो आदमी का ही आधार है, एक सोया हुआ आदमी है, दोनों के आकार में कोई फर्क नहीं। लेकिन ऐसा कहे कि नहीं है तो सीधा प्रत्याघात कितना बड़ा आता है, आकार तो वो का वो बड़ा है, जो कल देखा था वही आप देखो, लेकिन फाइनल हो बहुत बड़ा वो परोक्ष में वेदन नहीं आता, वेदन नहीं आता तो क्या करे? भूख लगी है और मिठाई भी है लेकिन पेट में नहीं पड़े वहां तक, वो मिठाई है वो क्या काम की? ऐसी बात है, बिना वेदन तो भूखे रहने की बात है। है मैंने मतलब क्या, उसके अलावा कोई खुराक नहीं मिली, पुष्टि नहीं मिलती आत्मा को। विचार ज्ञान से आत्मा का पता ही नहीं लगता, तो अध्यात्म के प्रकरण में तो ऐसा कहेंगे कि विचार ज्ञान में आत्मा का पता ही नहीं लगता। आत्मा जो वस्तु सहज अनंत प्रत्यक्ष है, मौजूद है, उसको परोक्षता का पर्दा डाल करके इसका पता कैसे लगाएंगे? तो पता है, उसका पता ही नहीं लगता। द्रविलिंग में क्या कसर रही है? समर्थ दृष्टान इसलिए लेते हैं, कसर कौन सी है? कसाई की मंदता नहीं है, उतनी है कि आज किसी को देखने में हजारवा भाग भी देखने में नहीं आ रहा, इतनी कसाई की मंदता। और ज्ञान का शोषण आज किसी को एक लाखवा भाग का नहीं है, इतना ज्ञान का शोषण। दोनों साथ इतना शांत दिखे कि इसको कोई इसकी चमड़ी उतारे और खार छाटे, गुरुदेव की दृष्टांत दे देते, जीवती चामड़ी उतारे और उस पर भी नमक का पानी छाटे, बढ़तरा हो गए ना, जलन हो गए, कुछ नहीं। उसकी आंख नहीं फरके क्या? यानी गुरुदेव क्या समझे? नो आंख में खूनो लाल मत आटलो उत्सर्ग करे, इतना उत्सर्ग करे बोले। आधार क्या लिया? मैं तो जैन मुनि हूं, मुझे क्रोध करने लायक नहीं, मैं तो क्षमा रखने वाला हूं, बस यही उसका आधार है। जो वेश धारण किया है तो उसका आधार आत्मा, उसका आधार अनंत शांति का पिंड का अवलंबन जो लेना चाहिए वो नहीं लिया। फिर भी इतनी मानसिक शांति रह सकती है, लेकिन वो शांति नहीं है वास्तव में।
हर से एकत्र छूट गया इसलिए बैठक हुई, हर से छूट गया इसलिए उसको बैठक नहीं होता, हर से एकत्र छूट गया इसलिए उसको बैठक नहीं होता।
किसको नहीं होता? द्रविलिंग को वेदन होता है, लेकिन मानसिक दृढ़ता ज्यादा है, आत्मिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता ज्यादा है। मानसिक दृढ़ता तो ऐसे बहुत लोगों को होती है,
आत्मा का स्वरूप तो बराबर मालूम नहीं रहता है, सोचते
मालूम रहता है, लेकिन अवलंबन लेना दूसरी बात है। विचार में ख्याल में आना, विचार से ख्याल में आना एक बात है, और प्रत्यक्ष होकर के अवलंबन में आना दूसरी बात है। बिल्कुल दो बात बहुत अलग अलग है। ऐसे तो लड़ते नहीं है सोल्जर लोग, लड़ते लड़ते उनका सर कट जाता है तो उसका जो धड़ है वो लड़ता है कुछ समय तक, जो आयुष भी छूटा हो तो उसमें उसका जो सर है वो नीचे गिर जाता है तो हंसता है क्या? रोता नहीं है तो हंसता है क्या? कि मेरी मातृभूमि के लिए मैंने बलिदान दिया, ये मेरा गौरव है, बस यही अवलंबन है उसको, और क्या? ऐसा एक कल्पित अवलंबन में भी वो प्राण की आहुति दे सकता है, इतना एक मनोबल है, ये मानसिक ताकत है। तो आत्मिक ताकत कितनी होगी? अनंत आत्म शक्ति वो कैसी चीज होगी? ऐसी बात अपने को तो यहां आत्मिक शक्ति को प्रकट करना है। मानसिक बल तो आज बलवान है तो कल कमजोर हो जाएगा, इसका क्या भरोसा? आधार सुगल है, जीव भी है,
संस्कार ना विषय में संस्कार लईने आया नहीं, आठो तत्व नो परिचय करो तो संस्कार ग्रहण क्या एम कही सकते हैं?
प्रश्न शुरू में ही चला गया ने यही प्रश्न पांच सात मिनट पहले संसार में चर्चा हो गई। गुरु भाई ने प्रश्न किया कि अभी संस्कार मिले के संस्कार कब मिलता है, कैसे? तो संस्कार मिलने का कोई जीव को भाव है तो कौन सा है? पहले तो उसको समझे कि किस भाव से संस्कार पड़ता है या डलता है। कि जीव के जो आत्मरुचि के जो परिणाम हैं वो संस्कार पढ़ने में निमित्त होते हैं, और वो दो अवस्था में ऐसे ऐसी रुचि के होने की संभावना है। एक तो भावभाषण के पहले कभी किसी लायक जीव को अध्यात्म तत्व को सुनते सुनते प्रत्यक्ष सजीवन होते हुए कहने वाला या तो सर्वज्ञ हो या तो मुनिराज हो या तो सत्पुरुष हो, और उनको बहुत रुचि हो जाए उसको संस्कार पड़ जाता है जिसका पता उनको खुद तो नहीं रहता है, क्योंकि वो तो रुचि में डूबा हुआ है उस वक्त, तो उनको तो पता ही नहीं है कि संस्कार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए गुरुदेव ऐसे परिणाम को अव्यक्त रुचि कहते थे। अव्यक्त मतलब खुद को ही नहीं ख्याल पड़े कि ये संस्कार वाली रुचि थे। एक तो किसी जीव को ऐसे संस्कार पड़ता है, ज्ञानी को ख्याल में कोई ऐसा उपयोग लग जाए तो लग ख्याल में आ जाए, उपयोग लगने पर है किसी का कोई ज्ञानी ऐसे तो उपयोग ही दूसरे का नहीं लगा रहे, दूसरे के और उसका उपयोग ज्यादा गहराई में जावे ही नहीं ऐसा भी लगता है। और दूसरा जो स्टेज है वो भावभाषण वाला है, जब स्वरूप का भाव भाषण ज्ञान लक्षण से विदल लक्षण से किसी जीव को होता है उस वक्त अनंत सुख का भंडार को पहचानने में आता है, और सुख की तो तीव्र इच्छा तीव्र अभिलाषा है ही सब को, तो अपना अनंत अनंत सुख सुख का समुद्र भी जिसको उतना कम पड़े, क्योंकि समुद्र को भी बॉटम होता है, ये तो बॉटमलेस चीज है, इतना सुख भरा है उसका पता जब चल जाता है तो रुचि बहुत तीव्र हो जाती है, तो उस वक्त तो नियम से उसका डल जाता है, उसको तो संस्कार पड़े ही पड़े और उसको पता भी लग जाता है ये व्यक्त रुचि जिसको कहते हैं। उस वक्त तो जिसको भाववासन हुआ उनको तो सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा ही, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का कारण होने से श्रीमद जी ने उसको संकेत बोला है, कारण में कार्य का उपचार करके उसको ही संकेत बोल दिया, उसको तो बोला इसलिए उसको बीज ज्ञान भी कहते हैं, कोई ज्ञानी उसको बीज ज्ञान कहते हैं। ये बीज ऐसा है कि इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अंकुर फूटेंगे और फूटेंगे ही, इस बीज ऐसा का वैसा कभी रहने वाला कभी कोई ऐसा जीव होते हैं जिसका आयुष खत्म हो गया भाववासन होते ही, तो उसको दूसरे रूप में कहीं भी जाएगा नहीं, भले उसको पता ही नहीं हुए थे भावांतर होने से क्या है कि पूर्व में कैसे परिणाम हुआ उसका बिल्कुल विस्मृत हो जाता है, इसको जाते स्मरण हो दूसरी बात है, जिसको जाते स्मरण नहीं होता उसको तो पता ही नहीं चलता कि अगला भाव कौन सा था, कैसा मैंने परिणाम किया था, कैसा पाप किया, कैसा पुण्य किया, कैसा कोई देवगुरु शास्त्र के और तत्व ज्ञान के कैसे परिणाम, कुछ खबर नहीं हो कोई पता नहीं
चलता
तो भाव बदला है तो पता नहीं
चलता,
क्योंकि वहां कोई धारा नहीं, समय दर्शन में उनके बाद तो धारा रहती है ज्ञान धारा, वो ज्ञान धारा छूटती नहीं और समाधि मरण होता है, जागृत अवस्था में देह त्याग होता है। समय दृष्टि को क्या होता है कि वैसे तो इनकी धारा चलती ही है, लेकिन जब देहांत का काल होता है उसको उत्साह बहुत तेज हो जाता है, उनको पता चलता है कि अभी कोई गड़बड़ी है, शारीरिक अवस्था में गड़बड़ी है, ये शरीर का संयोग रहने वाला नहीं है, छूट जाएगा ये संयोग, इसका पता चल जाता है, तो सेंसेशन है पर्टिकुलर टाइप की सेंसेशन का पता चल जाता है कि ये शरीर अभी नहीं टूटेगा, तो बहुत जागृति मार आते, उतने पुरुषार्थ में आते, उतने पुरुषार्थ में आते तो कोई तो निर्विकल्प अवस्था में दे पाते, उतनी जागृति रहती है कि उसका नया पर्याय में वो जागृति सही चालू ही रहता है। देह त्याग के काल में उसका पुरुषार्थ बढ़ जाता है, कोई भी सम्यक दृष्टि हो। सामान्य पुरुषार्थ तो इसका चलता ही है, बिना पुरुषार्थ तो ज्ञान धारा तो चालू ही नहीं रहे, हो जाए मिथ्या दृष्टि में। तो देहांत का काल होता है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कभी मृत्यु से नहीं डरता। निर्जरा अधिकार में आएगा सप्तपत रही में मृत्यु भय नहीं है, सम्यक दृष्टि को मृत्यु का भय होता ही नहीं, उसको उल्टा ऐसा लेता है कि ये तो मृत्यु महोत्सव है मेरे लिए। क्यों? कि पुरुषार्थ सहज रूप से बढ़ने का अवसर ये तो है, इतना तेज पुरुषार्थ होने का कोई मौका ही नहीं मिलता जितना देहांत के काल में होता है, तो उनके लिए तो एक वो खुशी का चीज है, महोत्सव का चीज है। तो भय का जैसे सामान्य प्राणी को भय लगता है, मुमुक्षु को भी नहीं लगेगा, समय व्यक्ति को कैसा लगेगा, तीव्र मुमुक्षु होगा तो उनको भी नहीं लगेगा।
संस्कृति शिवाय समाधि संस्कृति शिवाय समाधि
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 भीतर की चीज कौन समझे, सोया हुआ है, शरीर सोया हुआ है लेकिन आत्मा थोड़ा सोया हुआ है, और सेंसेशन चालू हो जाए तो कोई नींद में थोड़ी मृत्यु होती है, किसी की भी नहीं होती है नींद में, किसी की मृत्यु होती ही नहीं। उसका तो वेदना, प्राण छूटने से उनको वेदना बढ़ती है, सामान्य घाव लगता है तो भी वेदना होती है, तो प्राण छूटने में तो बहुत वेदना होती है, अरे कुछ क्षण में हो कुछ सेकंडों में, लेकिन वेदना तो बहुत तीव्र होती है, तो उसमें कोई नींद होने का तो सवाल ही नहीं। तो अपनी अपनी समझ से बात करें करने वाले, लेकिन अंतर जागरण तो बहुत होती है, तो उनको तो पता चल जाता है कि अभी कोई गड़बड़ी है, बहुत सावधान हो जाते हैं, इतने सावधान हो जाते, उतने सावधान हो जाते कि दूसरे उसको बात करना पसंद नहीं करे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे उसको बुलाओ उसको बुलाओ, ऐसा कोई बात नहीं हो, तो बात करे तो बोलेंगे बात मत करो, मेरी सावधानी में भंग मत कर डालो, तो अपनी सावधानी करे उस बोला, वो भी सोए हुए थे आराम से, बोले मैं मेरे स्वरूप में सावधान हूँ, मुझे बुलाना नहीं है, मैं अपने स्वरूप में लीन रहूंगा, वो चाहते हैं मुझे कोई बन पाए नींद थोड़ी आ जाती
है। संस्कार तो भाव बर्तन होते ही नहीं, संस्कार भाव बर्तन तो होता ही नहीं,
बिना संस्कार
बिना संस्कार के भाव बर्तन होता नहीं,
नहीं बिना संस्कार अनुभव नहीं होता, भाव भाषण तो कोई संस्कार वाले को हमें ऐसा पड़ा, भाव भाषण के काल में संस्कार पड़ता है, नया संस्कार पड़ता है, कोई भी जीव प्रयत्न करके भाव भाषण में आता है तो उसको संस्कार उसी वक्त होता है, पहले संस्कार करे उसके बाद। तो हम लोग क्या है, यानी कि दशा नहीं समझते, इसलिए कई प्रकार के तर्क उठते हैं, क्या ज्ञानी को नींद में ज्ञान धारा नहीं चलती है क्या? चेस्ट पेन होता
है,
तो अपनी अपनी समझ की बात है, माता जी को क्या समझते है, कैसा समझते हैं, इनका स्वरूप कैसा समझते है, उस पर अपने को भी निर्भर है, कोई कैसा कोई बोले इसलिए क्या हो गया, गुरुदेव के बारे में बात चली थी कि नहीं चली थी, डॉक्टर चंदू भाई वहां उपस्थित थे तो कैसा बोल गए, समझ की बात है, बहुत जागरूक
પ્રશસ્ત દ્વેષ નહીં હૈ, પ્રશસ્ત દ્વેષ ઉનકો નહીં હૈ, જિસકો પ્રશસ્ત રાગ હોતા હૈ ઉસકો પ્રશસ્ત દ્વેષ હોતા હૈ, તો ઉનકો ઇનકે પ્રતિ રાગ ઉતના અચ્છા નહીં થા, પ્રશસ્ત રાગ નહીં થા, પ્રશસ્ત રાગ વાલે તો પ્રશસ્ત દ્વેષ એક સિક્કા કે દો બાજુ હોને સે હોતા હી હૈ, લાના નહીં પડતા, લેકિન
ખાસ કરીને મેં તો પ્રત્યક્ષ ગુરુ
પ્રત્યક્ષતા મેં જોર જ્યાદા વિશેષ બાત કિસકી હૈ, તમે બાત કિસકી હૈ,
ભાવ સમજ
ભાવ, લેકિન કિસકા મોક્ષ તો ક્યાં હૈ, પ્રત્યક્ષ ભાષિત હુઆ હૈ ક્યા,
ભાષિત નહીં હુઆ, લેકિન વો કિસ કિસ બાજુ અપના ધ્યાન દે,
કૈસા હૈ કે પ્રત્યક્ષતા ઓર પરોક્ષતા વો જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ, દૂસરે ગુણ મેં તો પ્રત્યક્ષતા પરોક્ષતા કા સવાલ પેદા નહીં હોતા, ઓર એસે પ્રોચિત મેં દિયા હૈ કે સમ્યક દર્શન પ્રત્યક્ષ કૈસે હુઆ, એસા કરકે કોઈ પ્રશ્ન નહીં થા, મજી ને જવાબ દીયા કે પ્રત્યક્ષતા પરોક્ષતા જ્ઞાન કે પર્યાય, શ્રદ્ધા કે પર્યાય મેં વૈસા નહીં હોતા, ચરિત્ર કે પર્યાય મેં વૈસા નહીં, તો જો જ્ઞાયક હું વો ભી જ્ઞાન પ્રધાન હું, ઓર જ્ઞાયક હું ઓર પરોક્ષ હું, એસા લેના હૈ ક્યા, એસા લેના, મોક્ષ કો જ્ઞાયક હું ઓર પરોક્ષ હું, એસા લેના હૈ ક્યા,
જ્ઞાયક હું એટલે પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ કા ઇતના વિશ્લેષણ નહીં હોતા, પ્રત્યક્ષ હું તો પ્રત્યક્ષ તો પ્રત્યક્ષ કે માધ્યમ થી સમજાના તો જ્ઞાન જ્ઞાન વેદન,
પ્રત્યક્ષતા ઓર નાયકતા અલગ અલગ તો હૈ કે, નાયકતા ઓર પ્રત્યક્ષતા અલગ અલગ તો હૈ કે, કે ભાવ મેં નાયકતા આને સે પ્રત્યક્ષતા નહીં આવે, પ્રત્યક્ષતા આને સે જ્ઞાયકતા નહીં આવે, એસા બન સકતા હૈ ક્યા, કભી બનતા હૈ, અલગ અલગ હોવે તો અલગ તો હૈ, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાયક પડે તો એસી વાત હૈ, વાત તો એસી હૈ, જો અલગ અલગ ગુણ હો, અલગ અલગ ગુણ કે પર્યાય હો, તબ યે પ્રશ્ન હો સકતા હૈ, જેકે અસ્તિત્વ ઓર ન્યાયિક પણા, અસ્તિત્વ પણા ઓર ન્યાયિક પણે મેં વો પ્રશ્ન હો સકતા હૈ, પ્રત્યક્ષપણે ઓર ન્યાયપણે મેં વો પ્રશ્ન,
જ્ઞાનની ઓળખાણ જ્ઞાન વેદન થી છે, જ્ઞાનની સ્વસંવેદન થી જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતા છે, બાકીમાં ફરક એટલે જે સ્ટેજ જુદા જુદા બતાવે કે જ્ઞાન વેદન થી જ્ઞાનની ઓળખાણ છે, એ અવલોકન નો સ્ટેજ આવે છે, એ ઓળખાણ નો સ્ટેજ છે, અવલોકન દ્વારા ઓળખાણ, અને બીજું નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ સ્વસંવેદન થી પ્રત્યક્ષ પણ છે, એટલે એ આખું આખું જયારે લખાણ આવે છે, જ્ઞાનની ઓળખાણ જ્ઞાન વેદન થી છે અને સંવેદન થી પ્રત્યક્ષ પણ છે, હવે વેદન અને સંવેદન નો તફાવત ત્યાં કેવી રીતે,
એટલે શું છે કે વેદન જો જ્યાં પહેચાન હૈ વહા લગતા હૈ ભાષ્યમાન પણા હોતા હૈ, લગતા હૈ ફીલ હોતા હૈ, ફીલ, હા उसी को भाषण कहते हैं। और स्वसंवेदन में तो वहां तो विकल्प की उपस्थिति भी है, जहां भाष्यमान प्रणय है वहां तो स्वविकल्प दशा में भाषण है, लेकिन लगता है
मन द्वारा, मन द्वारा माध्यम
मन है, लेकिन विकल्प का कुछ अभाव करके वो भाषण होता है। तो 144 में दिया
अंश अभाव,
अभाव तो मतलब क्या है इसका, कि अनादि से जीव की पर्याय वाक्य आधारित परिणाम चल रहा है। विचार ज्ञान में राग का आभाव है, राग की मुख्यता है, राग में स्वपना है। भाव भाषण के काल में क्या हुआ कि ज्ञान क्रिया के आधार से, ज्ञान लक्षण ज्ञान क्रिया में, इसके आधार से ज्ञान स्वभाव को देखा। राग था से ही
भाव
भाषण है,
अवलोकन द्वारा ओरखण करवाने जो प्रयत्न चालू है, ये न ले
अवलोकन करते करते और पहचान हुई हुई भाव भाषण है,
ओरखण अल्टीमेट स्टेज।
हाँ, ये भाव भाषण है, वहां तक भाव भाषण नहीं है, वहां वहां तक भाव भाषण का प्रोसेस अवश्य है, लेकिन भाव भाषण हुआ नहीं। एक अंडर प्रोसेस बात चलती है, एक ओरिएंटेड पोजिशन है।
वेदन आविर्भूत तो थाय वेदन
आविर्भूत तो थाय, जब भाव भाषण होता है
पहला,
उसके पहला थोड़ा उसका जो बिल्कुल वेदन क्या है उसके जो अनुभिज्ञ था उसका थोड़ा
परिचय,
थोड़ा परिचय मिलता है, लेकिन पहचान जो पूरी है वो तो भाव भाषण के काल में आती है, तो जिसमें पूरा स्वभाव भावभाषण किसका हुआ, आत्म स्वभाव का हो गया, ऐसी बात
है।
तो अवलोकन में तो क्या है कि कोशिश है, एक प्रयास है, वो प्रोसेस है। भावभाषण में नहीं, एक ही लाख ज्ञान का, ज्ञान वेदन का आधार से वो भावभाषण भले नहीं चाहिए हुई, लेकिन आधार नहीं है, विकल्प होने पर भी उसका अवलोकन नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने ऐसा 144 में बोला कि राग का अंश अभाव किया, लेकिन निरुक्त सभी दर्शन पहले अभाव कैसे हो सकता है, लेकिन वहां अवलोकन नहीं है उतना बताना है। तो शब्द भारी प्रयोग किया है, भारी शब्द का प्रयोग किया है, ये बात तो उतनी सी है।
अवलंबन
ज्ञान का अवलंबन है, ज्ञान सामान्य का अवलंबन, और ज्ञान सामान्य मन आश्रित नहीं करता।
शुरुआत में पर ज्ञान सामान्य मुख्य करवा पर मन आश्रित होना बहुत कठिन है,
उपेक्षा से नहीं, जो ज्ञान विशेष से ही मन आश्रित चाले तो उनकी उपेक्षा होने लगे, उनकी उपेक्षा में ज्ञान सामान्य का उनकी मुख्यता होगी, इनकी गौणता नहीं होगी, उपेक्षा नहीं होगी तो ज्ञान सामान्य की मुख्यता आएगी कहां, मुख्यता नहीं आएगी तो समझ में भी नहीं आएगा कि ज्ञान सामान्य और वेदन क्या चीज है। शब्द समझ में आएगा लेकिन भाव तो समझ में नहीं आएगा, भाव तो जब ग्रहण होता है, अनुभव होता है तब तो समझ में आता, वो तो अनुभव की चीज है, वेदन तो अनुभव की चीज है।
सामान्य ज्ञान में मुख्य करी में अवलोकता जो वेदन
समझ में आ जाता है, क्योंकि वो जो विशेष उधर चलता था वो सामान्य पर आया। क्या हुआ, जो विशेष इधर उधर जो चलता था वो भी सामान्य पर आया, अरे उधर तो वेदन होता है, मेरा वेदन तो चालू है, ज्ञान का वेदन तो ज्ञान में चालू है, ऐसा तो विशेष मौज पर आया तो वहां उसको सम्मुखता कहते हैं, उसी को ही सम्मुखता कहते हैं, ये सम्मुख हुआ, वहां से दिशा बदली।
भावभाषण
तो में तो दिशा बदलती है, भावभाषण के पहले उसकी कोशिश चलती है,
दिशा खरीदने कोशिश,
हाँ वो कोशिश को एक पर्टिकुलर टाइप की है, उसका टाइप अलग है जो लोग अपने खड़ा होता है, इसको अनुभव पद्धति कहते हैं, कार्य पद्धति कहते हैं, अनुभव की वो कार्य पद्धति है, अनुभव पद्धति जिसको बोले, एक गुरुदेव का रचनामृत है। किसी ने प्रश्न पूछा है 446 आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना, हमारा पुरुषार्थ उपड़ता नहीं उठता नहीं। उत्तर दिया है कि चैतन्य स्वभाव का महिमा कोई अचिंत्य है। अचिंत्य मैंने क्या मन से पार जाना पड़े तब पता चले, मन का चिंतन में उसका समावेश नहीं होता। तो चैतन्य स्वभाव कैसा है कि जिसकी महिमा ही अचिंत्य है, ऐसा अंदर से महिमा आए वो तो प्रत्यक्ष भाव वासन बिना आ नहीं सकता। तब स्वे तरफ का पुरुषार्थ उपड़े उठे। और वास्तव में तो जो पर्याय परलक्ष्य है विशेष ज्ञान के, वो स्वलक्ष्य करना उधर आना उसमें ही पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ वहां से तो इधर उधर हमारा जो ज्ञान विशेष चलता है उसको सामान्य की ओर ले जाने में ही पुरुषार्थ है। ये महान पुरुषार्थ पहला है। भले ही शास्त्र ज्ञान करे धारणा ज्ञान कर ले किंतु पर्याय को स्वलक्ष्य में वालना, ये पुरुषार्थ अनंत है, वो महान पुरुषार्थ है। बस यही पुरुषार्थ आगे बढ़ करके अनुभव बन जाता है। स्वलक्ष्य पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। राग छूटता है, छूटता है मतलब पैदा नहीं होता। वासन को स्वरूप निश्चय है। बाहर में अपन कोई डिसीशन लेना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ भी उनके अगल बगल के पड़खे का विचार होता है, वो क्या है, ये डिसीशन का प्रोसेस है। लेकिन उसमें और दूसरे विचार में फर्क तो है ही, ऐसे अवलोकन है वो एक प्रोसेस है स्वरूप निश्चय करने के लिए। किसी को बिना अवलोकन स्वरूप निश्चय हो जाए वो असंभव है, वो नहीं बनेगा। इसलिए विचार से कोई एक कदम आगे जाना हो